अब आयत 41 से ख्वाब की ताबीर बताते हैं। या साहिब ये सिजनी अम्मा हदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, ए मेरे जेल के दोनों साथियों, देखिए वही मोहब्बत, ओ माई डियर फ्रेंड्स माई बडीज, तुम में से एक तो अपने आका को शराब पिलाएगा, व अम्मल आखरु, और जो दूसरा है फयुसलबु फताकुलु तैरु मिन रासिही, उसे सूली दी जाएगी और परिंदे इसके सर में से नोच नोच कर खाएंगे। कुदियल अमरु, फैसला कर दिया गया उस मामले का, अल्लज़ी फीही तस्तफ्तियान, जिसके मामले में तुम दोनों मुझसे पूछ रहे थे। यहाँ भी आप देखिए अमल की बहुत ही खूबसूरत बातें। पहली बात देखिए कि ख्वाब की ताबीर बताई है, पहले किसकी बताई है? जिसका ख्वाब अच्छा था। हुआ ये था कि नान भाई जो था उसने जहर दिया हुआ था, उसने इस कत्ल के मुकदमे में कत्ल हो जाना था, और जो शराब पिलाने वाला था वो सच्चा था, उसने रुसुरखरू हो जाना था। हज़रत यूसुफ़ को दोनों के ख्वाबों से ये बात समझ आ गई थी, लेकिन ताबीर पहले किसकी बताई? जिसकी ताबीर अच्छी थी। ये है वो बात जिसको अल्लाह के नबी ने भी हदीस में कहा कि बशिरु वला तुनफ़िरु, लोगों को खुशखबरियाँ दो, उनको नफ़रत ना दिलाओ। यानी जब लोगों को कोई बुरी बात बतानी भी हो तो उससे पहले अच्छी बात जो है वो उनको बता दो। दूसरी बात अब देखिए, इनडायरेक्ट बात की, ये नहीं किया कि तुम उसकी आंखों में आंखें डाल के कहोगा कि तुम तो ये काम करते रहोगे और तुम तो सूली पे चढ़ जाओगे। इससे क्या पता चलता है कि तबलीग करते वक्त जिसकी बात हो बल्कि उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए, वरना तो वो उस गिल्ट की वजह से बात सुनने से ज़्यादा शर्मसार होगा। इनडायरेक्ट तबलीग का इशारा मिलता है, ठीक है। अगली बात देखिए, इसमें लफ्ज़ आया रब्बहू, तो रब क्या? तो रब का मानी यहाँ बादशाह के लिए। अरबी ज़ुबान में मुख्तलिफ़ तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो रब का लफ्ज़ ये है कि तुम अपनी जॉब पे दोबारा चले जाओगे और तुम्हारा ये सारा मामला जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। हाँ, वह अम्मल आखरु, वो दूसरा, अब क्या वो दूसरा कहीं दूर था? वहीं बैठा हुआ था ना, लेकिन बस ऐसे हल्का सा जिक्र कर दिया कि हाँ हम तुम दोनों में से एक ऐसा है कि फयुस लबू, वो सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। फिर क्या होगा? फता कुलो तैरु में रासी ही, परिंदे इसके सर में से नोच नोच कर खाएंगे, ठीक है। तो इसे दोनों की ताबीर भी बता दी, बात ख़त्म हो गई, सब कुछ ठीक ख़त्म करके अब इसे बात ख़त्म, बस ख्वाब का इतना ही जिक्र है। अच्छा, फिर क्या हुआ? यूसुफ ने जो बताया था वो बात बिल्कुल सच हो गई, और सच भी कैसे हुई? आयत 42 देखिएगा, वकाल लिल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजि मिन्हुमा, और यूसुफ ने उस शख्स से जिसके बारे में आपने ये गुमान किया था कि वो इन दोनों में से निजात पा जाएगा, क्या कहा? उज़्कुरनी इंदा रब्बिक, अपने आका से मेरा जिक्र भी करना। यानी वही बात हुई, मुकदमा चला, बादशाह को शराब पिलाने वाला था वो इस मुकदमे से बाइज्जत रहा हो गया, और नान भाई पे कत्ल का मुकदमा साबित हुआ, उसको सूली पे चढ़ा दिया गया। अब ये शख्स जो निजात पा रहा है, जब जेल से आज़ाद हुआ कि भाई इस पे अब जुर्म नहीं है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसको क्या कहा कि तुम यहाँ से जा रहे हो ना, तो ज़रा अपने बादशाह या रब्बहू या अपने आका से मेरा जिक्र कर देना कि जेल में एक शख्स है बग़ैर किसी जुर्म के बैठा हुआ है, ज़रा उसका मुकदमा खोल ले, ज़रा उसकी फ़ाइलों को देखें कि क्या होता है। यूसुफ ने क्या किया? असबाब यूज़ किए। अल्लाह ने देखिए क्या किया, फ़ानसाखु शैतानु ज़िक्र रब्बिही, तो उसे भुलाए रखा शैतान ने ज़िक्र करना अपने आका से। फिर नतीजा क्या निकला? फ़लबिस फ़िस्सिजनि बिदअ सिनीन, तो आप रहे जेल में कई बरस तक। जिसको कहते हैं कि तकदीर गालिब आती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोशिश की, मीन्स इस्तेमाल किए कि मैं बेगुनाह कैद हुआ हूँ, मुझे निकाल दिया जाए, लेकिन अल्लाह अपना काम करके रहता है। अल्लाह ताला चाहते थे कि यूसुफ अभी कई और साल रहें जेल में, एक वजह। दूसरी वजह क्या थी आप इमेजिन कीजिए, वो साखी यहाँ से निकला, बादशाह के दरबार में गया, फिर बैठ के कहता कि बादशाह सलामत, जेल में मेरा एक दोस्त था और वो बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर झूठा मुकदमा लग गया हुआ है, और आप उसको बुला के ज़रा उसके मुकदमे की छानबीन करें, कैसा फील होता? हो सकता है बादशाह भी सुन के इग्नोर करता, भाई जेल में तो इतने कई होंगे, हम क्यों करें। अगर बिलफर्ज़ इस तरह करने से यूसुफ जेल से बाहर आ जाते तो क्या वो इज्जत होनी थी जब आगे होने वाली है? اللہ چاہتے تھے کہ یوسف عزت کے ساتھ جیل سے نکلے. ابھی یوسف کی مشکل اللہ نے کچھ اور سال لمبی بھی کر دی کیونکہ ابھی ان کو اور محسن بنانا تھا. دوسری بات اس حصے سے پتہ چلتی ہے کہ شیطان بندے کو نیکیاں کرنا بھلا دیتا ہے. انسان بھول ہی جاتا ہے, نماز کا وقت تک بھلا دیتا ہے, کئی اور کاموں کی نیتیں ہم نے کی ہوتی ہیں لیکن بعد میں یاد نہیں رکھتے, بھول جاتے ہیں, ذہن سے نکل جاتی ہیں چیزیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے بدعا کا جو لفظ ہے نا, عربی زبان میں 9 سے کم تک کے لفظوں کے لیے آتا ہے, یعنی 10 سے کم سال کی مدت تک وہ جیل میں رہے. خیر اب کیا ہوا, اب یوسف کی زندگی کا ایک اور مرحلہ. کتنے سی سو ہیں, کبھی اوپر کبھی نیچے, باپ کی محبت کا عروج تو کنویں کی گہرائی کی بستی, وہاں سے نکلے تو عزیز مصر کے گھر میں عزت ملی, محبت کچھ زیادہ ہی ملی تو وہاں سے نکلے تو جیل کی پستیوں میں آ گئے. اب ان پستیوں سے اللہ دیکھیے کیسی عزت دینے لگا ہے جو الٹیمیٹ سکسیس کی صورت میں یوسف کی زندگی میں آتی ہے. اسباب اللہ نے کیا بنایا یوسف کے جیل سے نکلنے کے, آیت 43, وقال الملک, اور بادشاہ نے کہا, کون سا بادشاہ, جو اس وقت کا حکمران تھا, خواب دیکھا بادشاہ نے کیا, انی ارا سب بکرات سیمانی یا کلوہن سب ان اجاف, میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں. کتنا انیوژل خواب ہے, یعنی بیل ہیں موٹے موٹے کوز, 7 بہت فیٹی ہیں اور 7 بہت سکنی ہیں, تو جو فیٹی کوز ہیں ان کو دبلی گائیں کھا رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ خواب دیکھا ہے. یا تھوڑا سا سمجھ لیجیے کہ یہ ملک کون تھا. اس وقت تک مصر پہ فرعونہ حکومت نہیں تھی, یعنی فرعون کا ٹائٹل ابھی نہیں تھا, بلکہ وہاں چرواہے بادشاہ تھے. اگر آپ نے کبھی ہسٹری پڑھی ہو بنی اسرائیل کی تو آپ نے کبھی نام سنا ہے ہیکسس کنگس, نام سنا کبھی, یعنی چرواہے بادشاہ, یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ فرعون کے مصر پہ رولرشپ سے پہلے مصر پہ کنگشپ تھی, بس اس کو یہ سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے, ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کچھ صحرائی قبیلوں نے قوت حاصل کر کے علاقوں پر چڑھائی کی, پھر یا تو لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے یا پھر ان علاقوں میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کر لیتے تھے. اسی طرح مصر میں چرواہے بادشاہوں کی ایک حکومت ہوئی, صحرائی قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے کسی زمانے میں مصر پر حملہ کیا تھا اور وہاں کے جو مقامی لوگ تھے جو خود کو قبطی کہتے تھے ان کو غلام بنا کر وہاں حکومت قائم کی تھی. کہتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے نا یہ اسی خاندان کا ایک شخص تھا. اس بادشاہ کے کردار اور رویے سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ توحید سے دور, رسالت سے نابلد, لیکن فطرتاً ایک اچھا انسان تھا, جس کو آج آپ بھی کہہ سکتے ہیں, کئی نان مسلم بہت زیادہ ڈیسنٹ ہوتے ہیں. اب اس بادشاہ کا خواب پورا نہیں ہوا بلکہ خواب کا دوسرا حصہ, وَسَبَ سُنْبُلَاتٍ خُدْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ, اور 7 بالیاں ہیں ہری اور 7 خشک ہیں. بالیاں کس کو کہتے ہیں, ایئرز ہوتی ہیں نا جیسے جس کے اندر دانے ہوتے ہیں, یعنی 7 خشک خوشے اور 7 گیلے, تو وہ کھا رہے ہیں کون, سبز بالیاں جو ہیں وہ دوسری خشک ہیں. بس ابھی اتنا ہی کہہ کے بادشاہ کہتا ہے, یا ایھا الملأ, او میرے درباریو, افتونی فی رؤیایا, مجھے بتاؤ میرے اس خواب کی تعبیر, ان کنتم للرؤیا تعبرون, اگر تم میرے خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو. عام بات ہے, بادشاہ نے خواب دیکھا, اپنے درباریوں کو بلا لیا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر دے دو. اب درباری دیکھیے کیسے ہیں, آیت 44, قالوا ادغاث احلام, انہوں نے کہا یہ تو منتشر خواب ہے, پریشان خیال ہے, یہ بیڈ ڈریمز ہیں, آپ نے لگتا ہے کھانا ہیوی کھا لیا تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کی, یہ باتیں جو ہیں اس کی تو کوئی حقیقت ہمارے اوپر کھلی نہیں رہی, گویا کہ آپ کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں. اور ویسے بھی وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے, یعنی جو بادشاہ کے ارد گرد کے لوگ تھے وہ نہیں جانتے تھے اس خواب کی تعبیر. ان کو لگا یہ بالکل وہی خوابوں کی جو آپ کو قسموں میں لکھایا تھا حدیث النفس, کہ اس طرح کے اسکیٹرڈ خواب ہیں تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے, لہٰذا آپ ہم سے کچھ نہ پوچھیں. اب انہوں نے تو اس کو مایوس کر دیا, لیکن ہوا کیا, جو ہی لفظ خواب اور اس کی تعبیر آیا تو اس ساقی کو کیا یاد آ گیا, یوسف یاد آ گئے. تو آیت 45, وقال الذی نجا منہما, اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا, کون تھا وہ, ساقی. کیا वद दकर बाद उम्मतिन, और एक तवील अरसे के बाद उसको याद आ गया, यानी इतने साल गुजर गए थे फिर उसको याद आ गया। कौन? यूसुफ याद आ गया। बादशाह को कहने लगा, अना उनब्बीकुम बितावील ही फारसिलून, मैं बता दूंगा तुम लोगों को इसकी ताबीर, बस ज़रा मुझे क़ैद खाने में यूसुफ के पास भेज दें। यहाँ थोड़े से मुश्किल लफ्ज़ हैं, देखिएगा अदगास का जो लफ्ज़ है ना, दिख सुन से है, द्वात गैन सा, लकड़ियों का गट्ठर, झाड़ू पहले दौर में लोग देते थे ना, उसी को कहते हैं। मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ साइज़ की लकड़ियाँ होती हैं उस गट्ठर में, इसी से इसका मानी मिलाना भी है, कपड़े को धोना और साफ ना करना, इसको दिख सुन कहते हैं। यहाँ इससे मुराद है कन्फ्यूज्ड थॉट्स, नाइटमेयर, बेकार ख्वाब, खाम ख्याली, गड़बड़, बेजोड़ ख्वाब, यानी उन्होंने इसको अहमियत नहीं दी। आयत 45 में जो लफ्ज़ है वद दकरा, ये क्या है भाई? ये ज़करा ही था। अरबी ज़ुबान में एक असूल है कि दो ज़ालें जब मिलती हैं ना, ये लफ्ज़ कहता है व इज़ ज़करा, तो ज़ाल ज़ाल मिल जाती है तो दाल बन जाती है। कोई इसकी कुरान की बड़ी मरूफ जगह आपको याद है, रिपीटिशन है, फहल में मुद्दकिर, मुद्दकिर कौन है? मुज़क्किर, ठीक है जी, वही बात है बिल्कुल, कि दो ज़ालें मिलती हैं ना तो दाल, वरना तो बोल ही नहीं सकते मुज़क्किर, आवाज़ हिल जाती है ना, तो यहाँ ज़करा ही मुराद है। और उम्मत उनका लफ्ज़ यहाँ जो आया है लॉन्ग टाइम पीरियड के बारे में, खैर उसको याद आ गया, कहा कि भेज दो, बादशाह को तो चाहिए था, उसने उसको भेजा यूसुफ के पास। अब आयत 46 में देखिए कि इतने सालों के बाद वो शख्स यूसुफ के सामने है, और अब यूसुफ को एक और मौका मिल रहा है मोहसिन बनने का। कैसे? आयत 46, यूसुफु अय्युहस सिद्दीक, ए यूसुफ, ए सच्चे इंसान, कोई लगी लिपटी रखे बगैर वो शख्स यूसुफ को कैसे पुकारता है? बराह रास्त उसके नाम से, कोई टाइटल नहीं दिया, कुछ नहीं। हाँ, एक खूबी उसकी जो उसके जहन में थी वो क्या थी? कि ये सच्चा शख्स है। ये होती है सच्चाई, जो मोहसिन जो होता है ना वो सिद्दीक बन जाता है, एक वक्त आता है। और फौरन काम की बात पे आ गया, अफ्तिना फी सबी बकरात इन सीमानी याकुलुहुन नसबुन इजाफुन, हमें ताबीर बताइए सात मोटी गायों के बारे में कि इनको खा रही हैं सात दुबली गायें, और साथ ही वह सब भी सुम्बुलात इन खुसरें व खराज याबिसातिन, और सात सब्ज़ बालियों और दूसरी सात खुश्क बालियों के बारे में भी। क्यों बताएं ताबीर? ताकि लाअल्ली अर्जू इलन्नास, ताकि मैं वापस जाऊं लोगों की तरफ, लाअल्लहुम यालमून, ताकि इनको भी मालूम हो जाए। पहले तो ज़रा इस आयत में तर्ज़ तखातुब पे गौर कीजिए कि ये शख्स था तो मुशरिक ही ना, मुशरिक अपने काम का बंदा होता है, कोई माजरत नहीं, कोई लगी लिपटी नहीं, नो सॉरी, काम पड़ा आके खड़े हो गए। दूसरी बात देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम इस वक्त में क्या रवैया अख्तियार करते? आ गया मेरा ख्याल, पड़ गई मेरी ज़रूरत, आ गई याद हमारी, क्योंकि यूसुफ ने भी तो इनको ये काम कहा था ना, और उस काम का तो कोई नाम निशान नहीं। ज़रा ख़ुद से पूछिए, अगर यूसुफ की जगह मैं होती तो क्या करती इस बंदे का अशर? आते ही उसने काम पेश कर दिया, तो ये होते हैं मोहसिन के जो सिर्फ देने वाले होते हैं। आप जब दरख्त के पास जाते हैं और उससे फल लेते हैं ना, तो कभी दरख्त ने आगे से ये नहीं कहा, पानी तो कभी मुझे दिया नहीं तुमने, कभी मेरे अंदर खाद तो तुमने डाली कोई नहीं, बस दरख्त फल दे देता है। तो अपने लिए आदत बनाए, लोगों ने आपके 10 काम भी ना किए हों जो आपने उनको कहे हुए हैं, जब उनसे सामना हो एक जुमला भी ना उस पर पूछे, किया होगा तो बता देगा ठीक है, नहीं किया तो आपको उससे पूछ के मिलना क्या है? शर्मिंदगी से बचाएं, क्लैशेस से बचाएं लोगों को, लोग आपके और करीब आ जाएंगे, लोगों को अपनी तरफ से सिक्योर कर दें कि अना मुस्लिम, मेरी ज़ुबान मेरे हाथ से तुम मुस्लिम हो, मैं एक ताना भी नहीं तुम्हें दूंगा। कल रात किसी सिस्टर का फ़ोन आया, बहुत अच्छी सिस्टर है, बल्कि बहुत दिल से करीब है हमारी क्लासेस के, लेकिन वो नहीं आ पाती, वो उनके हालात ही ऐसे हैं कि वो जॉब करती हैं। तो मुझे रात को कहने लगी कि बीच में मेरी कभी कभी छुट्टी आती है हफ्ते में एक दिन, मैं सिर्फ इस सोच से नहीं इधर आती कि बहनें क्या कहेंगी कि कभी आती है कभी नहीं आती। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, उनको तो पता भी नहीं होगा आप कभी आती है नहीं आती, आप अपना फ़ायदा देखो। तो लोग बाज़ दफ़ा ये इनसिक्योरिटी फील करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अगर उस शख्स को हल्का सा भी शुबा होता कि यूसुफ तो पिछले सारे गड़े मुर्दे खोद देंगे, तो कभी इस तरह ना आता। तो लोगों को इस तरह का एतमाद दें, दिल की बात वो लोग आपसे कर लें जो आपसे दिल से दुश्मन है। यूसुफ ख्वाब की ताबीर बताते हैं, और ज़रा ताबीर बताते हुए वो दरबारियों की ताबीर भी जहन में रखें कि ये कुछ नहीं है, अदगास व अखलाम है, यानी उन्होंने इसको टाल दिया था, लेकिन कितना अहम ख्वाब था। काला तज़राउ नसब सिनीन अदावन, यूसुफ ने ताबीर बताते हुए फरमाया तुम 7 साल तक खूब ज़रात करोगे लगातार। दाबन का लफ्ज़ जो है ना दाब से है, दाब कहते हैं आदत को, पीछे कहाँ पड़ा है, कदा भी आली फिरौन, जैसी आदत थी आले फिरौन की। तो दाब क्या होता है, बार बार एक काम को करना, तो यहाँ इससे फिर मेहनत का मानी पाया जाता है कि 7 साल तक तुम खेती बाड़ी करोगे। सिनीन वही है जो पीछे भी बात कर गए, सन से सन 2000 फलां सन फलां, फिर क्या हो, फमा हसद तुम, फिर इस दौरान में जो फसल भी तुम काटोगे, फ़ज़रूहु फ़ी सुंबुली ही, तो उसको उसकी बालियों ही में रहने देना। इल्ला क़लीलन मिम्मा ताकुलून, सिवाय इस थोड़ी सी तादाद के जो तुम खाओगे। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ ये कि ख्वाब की ताबीर बताई, बल्कि हल भी बता दिया कि देखो तुम्हारे अब 7 साल बहुत ज़्यादा खुशहाली के आने वाले, तुम क्या करना कि जो अनाज उगेगा ना उसको उसकी बाली में छोड़ देना, थोड़ी सी निकाल लेना जो वक्ती तौर पे ज़रूरत का है, खाओ, और जो बाली में उसको सेव कर दो, क्योंकि इस तरह से जो दाने को सेव किया जाता है ना उसको घुन नहीं लगता। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आज से कितने साल पहले प्रिजर्व करने का तरीका सिखा दिया, कीड़ों से मकोड़ों से फसलों को गर्मी सर्दी से बचाने का तरीका। आज साइंस तरक्की करके जो चीज़ें जानती है वो उस वक़्त यूसुफ ने बग़ैर इसके बता दी। फिर क्या होगा, ये सालों में तुम खूब अनाज स्टोर कर लो, फिर क्या होगा, 48 सुमयाती मिम्बादी जालिक सब बुनशिदात, फिर इसके बाद 7 आएंगे साल बहुत सख्त। ये कौन से साल है, कहत के, खुशहाली के बाद 7 साल का कहत पड़ेगा। या कुलना मा कद्दम तुम लहुन्ना इल्ला कलीला मिम्मा तुख्सिनून, वो 7 साल चट कर जाएंगे इसको जो कुछ तुमने उनके लिए बचा रखा होगा, सिवाय इसके जो तुम महफूज कर लोगे बीज डालने के लिए। समझ आया मुश्किल जुमला, कि इन 7 सालों में जो तुम स्टोर करोगे गल्ला, उसमें निकाल निकाल के वो गल्ला खाना जब के कहता जाएगा, हाँ लेकिन उसमें से थोड़ा सा अनाज अगले सालों के बीज के तौर पे फिर महफूज कर लेना। कितनी अल्लाह ताला ने उनको हिकमत दी थी, ये है तावील अल हदीस, कि खाओ पियो और इस तरह वो 7 साल गुजर जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होना है ये भी बता दिया। सुमयाती मिम बादी ज़ालिका आमुन फीही युगासुन नास, फिर आएगा इसके बाद 1 साल के इसमें खूब बारिशें होंगी लोगों पर, वफीही यासिरून, और इसमें वो अंगूर का रस निचोड़ेंगे। साथ ही बता दिए, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कितने साल के ऊपर मुहित ताबीर बताई है, 15 साल, 7 फिर 7 और फिर 1। क्या खूबसूरत इल्म है, इसको इल्म कहते हैं। वो कह रहे थे अदगास व अहलाम, अच्छा जो बात हमें समझ नहीं आती ना हम उसको इस तरह ही टाल देते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, बड़े जोश में कोई ख्वाब देखते हैं, फिर आप जाते हैं किसी को कि पता नहीं इस ख्वाब के बाद तो मुझे जन्नत का कोई सर्टिफिकेट मिलना है। अब अगला बंदा जाके आपके ख्वाब को सुन के समझ नहीं पाता, वो कहता नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं सदका दे दो, तो लोग मुँह लटका के आ जाते हैं। जो ख्वाब देखते हैं ना उसका बड़ा दिल चाहता है कि लोग इस ख्वाब के आगे और रास्ते खोलें, फिर ये होगा वो होगा दिस एंड दैट, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर जो थी उसको सुन के ज़रा सोचिए कि बादशाह का दिल कितना खुश हुआ होगा। अब यूसुफ की ज़िंदगी का वो दौर है कि जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अल्लाह हु अकबर। लफ्ज़ युगास का मानी खूब बारिशें बरसाने वाला, गैस वो बारिश जो बहुत इंतज़ार के बाद हो, ठीक है। चलिए पूरी बात पढ़ के फिर इस पर तबसरा कर लेंगे। आयत 50 वक़ाल अल मलिकु, ये सब सुनकर, क्या सुनकर, ताबीर सुनकर बादशाह ने कहा इतूनी भी ही, इस शख्स को फौरन मेरे पास ले आओ। यानी जिसकी ताबीर इतनी अच्छी है, तदबीर इतनी प्यारी है, वो शख्स कितना इंटेलिजेंट होगा, ये जेल में रहने के काबिल नहीं है, इसको तो बादशाह का मशीर होना चाहिए या वजीर होना चाहिए, जो फौरन इसको लेकर आओ। फलम्मा जाहु रसूल, फिर जब आया उसके पास एलची, बादशाह ने अपना कासिद भेजा जेल में कि जाओ यूसुफ को लेकर आओ। क्या किया होगा यूसुफ ने, एक तो वो रवैया जो मेरा और आपका हो सकता है, और एक मोहसिन का रवैया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मोहसिन का रवैया अख्तियार करते हुए कहा, काल अर्जी इला रब्बी का, वापस चले जाओ अपने आका के पास, यदि मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। क्यों? जब तक मेरे ऊपर लगा हुआ इल्जाम ना धुल जाए। अगर मुझे बुलाना है तो मुकदमा खुलवाओ और फसल गुमा बालु निस्वतिल्लाती कत्तान आई दिया होना। फिर इससे पूछो कि इन औरतों का मामला क्या हुआ जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। हाँ लेकिन इन्ना रब्बी भी कई दिहिन्ना अलीम, यकीनन मेरा रब इनकी चालों से खूब वाकिफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यूसुफ की शराफत पे हैरान हूँ, अगर यूसुफ की जगह मैं होता। ये अल्लाह के नबी की कसरे नफसी है, हालांकि आप में सब्र उनसे भी ज़्यादा था, लेकिन आपने अपने आप को हल्का करते हुए कहा, अगर यूसुफ की जगह मैं होता तो एलची के बुलाने पर मैं उससे पहले निकल के उसके साथ चल पड़ता। सवाल पैदा होता है कि यूसुफ क्यों नहीं गए? क्योंकि यूसुफ को अब इस मुल्क में दीन का काम करना था, और दीन के काम करने वालों पर अगर मुकदमे हों और वांटेड शख्स हैं और इल्ज़ाम हैं और उन पे कोई करप्शन के केसेस हैं, तो लोग उनसे दीन नहीं लेंगे। ये वही बात है जो कई दफ़ा सुनी है आपने मेरे मुंह से, इमाम बुखारी की बात कि 1,000 अशरफियाँ समंदर में फेंक दी, हालांकि उनकी अपनी थी, इस खदशे से कि कहीं ये अशरफियाँ मेरे पास निकली तो लोग मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम सच ना कर दें। तो याद रखिए कि दीन वाले को अपने दामन को हद्दुल वसा पाक रखना चाहिए। इंसान होने के नाते बातें होती हैं, लेकिन कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जाहिरन या छुपा हुआ जिससे दीन का नुकसान हो, क्योंकि फिर आप अपने नहीं रहते, दीन के हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम एतिकाफ़ में थे, आपकी जौजा हज़रत सफ़िया आपको मिलने आई, वापसी में जब अंधेरा हुआ तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं आपको छोड़ के आता हूँ। यहाँ से मसला भी पता चलता है कि एतिकाफ़ में शख्स है तो वो बीवी को या किसी औरत घर वाली महरम है उसको छोड़ने जाना पड़े तो जा भी सकता है। जब अल्लाह के नबी अपनी जौजा के साथ जा रहे थे तो एक जगह देखा कुछ मर्द खड़े थे, तो अल्लाह के नबी जब उधर से गुजरे तो कहा कि कुछ गलत ना सोचना, मेरे साथ मेरी बीवी है। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, हम आपके बारे में ये सोचेंगे क्या? आप रात की तन्हाई में एक गैर औरत के साथ जा रहे थे? तो आपने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि शैतान इंसान के खून में ऐसे दौड़ता है कि उसके दिल में वसवसे डालता है, तो फिर हमारे बारे में क्यों ना वसवसे डाले? दीन के काम वालों के बारे में तो शैतान इतने लोगों को वसवसे छोड़ के उनको गुस्सा दिलाता होगा, इनको देखो इनको करो। तो कोशिश करें हर चीज़ को जिस हद तक क्लैरिफाई करें, और कोई चीज़ आपको लगे ना कि है ही कोई नहीं इसकी असल, तो वो ऊपर जाता है, उधर हाथ उठा दें। बात थोड़ी सच्ची झूठी हो ना तो खुद मिलके क्लियर कर लें कि मुझे लगा कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है, और अगर बात है ही कोई नहीं और आपको लगा है कि ये सिर्फ एक बात है, तो मान ले कि ये खुद बुरानी शैतान ने डाली है, फिर अल्लाह से कि अल्लाह इसका दिल बदल दे। एक और बड़ा खूबसूरत नुक्ता है इसमें जो हमारे लिए बहुत सीखने का है। हजरत यूसुफ से जब उस शख्स ने ताबीर पूछी तो यूसुफ ने उसको बता दी, जो तुम बता दो जाके। आम बंदा होता ना, पता क्या कहता, आई विल गो बाय माई सेल्फ, मेरा इल्म है जी मैं दूंगा। आज दीन के साथ इल्म के साथ ये फितने भी शुरू हो जाते हैं कि दीनदार अपना इल्म किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं कि शायद हमारे इल्म पे कॉपीराइट्स हैं। तो याद रखिए, खैर का कोई कॉपीराइट नहीं होता। आप ये बात कहीं भी 100 जगह सुना दें, हज़रत यूसुफ ने आने से इनकार कर दिया, सॉरी आई विल नॉट गो, जाओ पहले मुझ पर लगा हुआ इल्ज़ाम दूर करो। अब तो बादशाह का ये मसला बन गया था, उन्होंने फौरन वो केस निकाला, और मुफसरीन कहते हैं कि हो सकता है कि वो दौर का जो बादशाह था वो उन बेगमात में से किसी का शौहर हो जिनके ऊपर अब मुकदमा चल रहा है। लेकिन यूसुफ ने कहा कि ये तो होगा, वापस दोबारा पुरानी फाइलें खुलती हैं, फसल हुमा बाल निस्वत। अच्छा, ये यूसुफ का जुमला, इसमें भी बहुत खूबसूरत बातें हैं। ये नहीं कहा कि उन्होंने मुझे सिड्यूस किया, क्या कह रहे हैं, हाँ वो बिचारियां जिनके हाथ कट गए थे। ये अदब, हम तो अगले का बुरा नुक्ता पकड़ के बीच से वो पेश करते, वो जिन्होंने मुझे वरगलाया था, वो जिन्होंने मुझ पर डोरे डाले थे। नहीं, आगे भी देखिएगा, अपने भाइयों को भी कितने प्यारे अंदाज से कॉर्नर देते हैं, तो ये कॉर्नर देने का अंदाज है। हाँ वो बेचारी औरतें, पूछो उनका हाल ठीक है, जख्म ठीक हो गए, यानी उनकी बुराई का अंदाज नहीं है, और बात जो सच होगी वो खुल जाएगी। और साथ ही कहा कि तुम इस दुनिया की अदालत में उस मुकदमे को ना भी खोल पाओ, अल्लाह की अदालत में ये खुला हुआ है, क्योंकि इन्ना रब्बी भी कई दिखना आलिम। और यहाँ फिर लफ्ज़ कैद और मकर का फ़र्क याद रखें, जो पीछे भी आपको बता दिया था कि इसी तरह से अच्छा भी हो सकता है बुरा भी है। बादशाह सलामत के सामने अब मुकदमा पेश हुआ। आयत 51, काला मा खतबुकुन्ना, सुनाओ भाई औरतों तुम्हारा क्या मामला है। ये जो कुन्ना रावतुन्ना है ना, ये सब मुअन्नस के सीगे, फीमेल है, इसलिए तर्जमे में गलती ना खाइएगा। और खतब कहते हैं बड़ी अहम मुहिम, मुहिम जैसे उर्दू में एक लफ्ज़ है ना, 27वां पारा भी शुरू होता है इसी से। मा खतबुकुम, फरिश्ते आए थे हज़रत इब्राहिम के पास, बेसिकली प्लॉटिंग के मानों में कह लें, यानी अमूमन ऐसा मामला जिसमें कोई गड़बड़ी होती है, तो वकील या जज साहब ने औरतों से पूछा, भाई सुनाओ तुम्हारा क्या मामला था। इस रावतुन्ना यूसुफा, जब तुमने फिसलाना चाहा यूसुफ को। इस जुमले को हाईलाइट कहिए, जमा का सीगा रावतुन्ना, ये एक लफ्ज़ बताता है कि जो हरकत यूसुफ के साथ अजीज़ मिस्र की बीवी ने की थी, वही कोशिश बाद में उसकी दोस्तों ने भी की, क्योंकि यहाँ जमा का सीगा। बताओ भाई क्या किया था तुमने। अब सारी बोल उठी, कुलना, कहने लगी, हाशलिल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्लाह गवाह, मा अलिमना अलैहि मिन सुइन, हम तो इसके बारे में कोई बुराई नहीं जानते, यानी हमने उसकी कोई बुराई नहीं देखी। उस वक्त जो कुछ हुआ वो सब कुछ हमारी तरफ से था, यूसुफ बेगुनाह। अब जब सारी दोस्तों बोल उठी, तो अब अजीज़ मिस्र की बीवी कैसे चुप रहती। قالت امرأت العزیزی, عزیز مصر کی بیوی بولی, الان حس حسل حق, اب تو حقیقت واضح ہو گئی ہے, یعنی حق کھل کے آگیا, اب میں کیا چھپاؤں. ہاں, اس کو جملے کو ہائی لائٹ کیجیے گا جب بولوں گی, انا راوت ہوا نفس ہی, یہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, اور یقیناً وہ بالکل سچا تھا. شوہر کے سامنے کیا بولی تھی کہ اس نے تمہاری بیوی پہ ہاتھ ڈالا, یہاں کیا بول رہی ہے, وہ کیا تھا, جھوٹ, یہ کیا. لیکن حضرت یوسف کو اس سچ کو سننے کے لیے کتنے سال انتظار کرنا پڑا. یہ ہے وہ بات جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ سچ کو آنچ نہیں ہے. یوسف نے شور مچایا, دہائی دی, کوئی وکیل ہائر کیا بھاری فیسوں پہ کہ میری سچائی ثابت ہو, جیل کی کوٹریوں میں بیٹھ کے اللہ کا کام کرنے لگ گئے. اللہ نے ان کی بے گناہی کے لیے اس عورت سے اعتراف جرم کروا دیا. یہ بات سمجھ آ گئی تو ہم آدھے سے زیادہ وقت اپنا جو لوگوں کو اپنی صفائیاں پیش کرنے میں لگاتے ہیں نا, وہ نہ کریں. یہی بات آگے ہم سورت مریم میں حضرت مریم کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ جب پوچھے یہ بچہ کہاں سے آئے, تو کہنا میں نے روزہ رکھا ہوا, میں نہیں آج تم لوگوں سے بات کروں گی. جب وہ چپ رہی تو وہاں بچہ بول اٹھا. کبھی بھی اپنا دفاع خود نہ کریں, کہتے ہیں اللہ تو میرے حال کو جانتا ہے. اور آج کیوں بولی ہے بیوی اتنے سال بعد, اس کا جواب آیت 52 میں, ذالک, یہ کیا, یعنی یہ اقرار جرم, یہ اعتراف, اس لیے, لیعلم, تاکہ وہ جان لے, کیا, انی لم اخنہ بالغیب, کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی. اب یہ جملہ کیا ہے, اس کے کیا معنی ہے. سمپل بات تو لگتی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کہہ رہی ہے کہ آج اعتراف جرم اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا شوہر یہ سمجھ جائے کہ میں نے اس کے پیچھے خیانت نہیں کی, مطلب چلو میں نے کوشش تو کی لیکن وہ عمل کر نہیں سکی, یعنی میں آج بھی پاک دامن ہوں, میں اپنے شوہر کی کوئی خائن نہیں ہوں. دوسرا مفہوم, اگر ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائیں, تو مراد یہ ہے کہ اتنے دنوں سے تو گناہ کا جرم بوجھ اپنے دل پہ رکھے ہوئی تھی, لیکن آج اللہ کے سامنے بھی اور بندوں کے سامنے اقرار کرتی ہوں کہ ہاں میں نے کوشش تو کی تھی لیکن میں یہ غلط کام کر نہیں سکی. اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت یوسف بھی ہیں. ساری باتوں کو ایک طرف کر دیجئے, یہ بات سچ ہے کہ سارے مجمع کو پتہ چل گیا کہ یوسف بے گناہ اور قصور عورتوں کا تھا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا. ان سارے جملوں اور اس سے اگلا جملہ, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عورت نے بالآخر توبہ کر لی تھی, اس نے بھی توبہ کر لی تھی, اور यूसुफ के भाइयों ने भी बाद में तौबा की, बल्कि बास जगह तो आता है कि वो फिर नबी भी बनाए गए थे। सच्ची बात कभी नहीं छुपती। अगर आप मोहसिन हैं ना, वक्ती तौर पे लोग आपके बारे में गलत सोच भी सकते हैं, बदगुमान भी हो सकते हैं, लेकिन वो उस पर कायम नहीं रहेंगे। हमेशा वही चीज़ कायम रहती है जो सच होती है। ये अल्लाह ताला की एक हिफाजत है।